ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली सरकार ने गांवों के विकास के लिए बजट में 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 7 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन करेंगे। केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना शुरू होने के बाद से इसके तहत रेहड़ी पटरी वालों को लगभग 8600 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। और हरियाणा में प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन मामले में सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्राची प्रिया। नागर विमानन मंत्रालय ने बताया है कि सभी हवाई अड्डों पर विमान संचालन प्रक्रिया सामान्य रूप से शुरू हो गई है। माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम में गड़बड़ी के कारण कल उड़ानें प्रभावित हुई थी। नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि सरकार हवाई परिचालन की लगातार निगरानी कर रही है। एयरलाइंस यह सुनिश्चित कर रही है कि यात्रा समायोजन और भुगतान का ध्यान रखा जाए।
कल ऑपरेशन में सभी जगह पे ब्रेक था, दिक्कतें आज भी थी, लेकिन आज माइक्रोसॉफ्ट का इश्यू भी सॉल्व हो गया, तो पहले जैसा ही शेड्यूल अभी पूरे देश में फ्लाइट का जो है शुरू हो गया है। मुझे नहीं लगता अभी कोई दिक्कत यात्रियों को है। डीजीसीए का यही कहना है कि अभी सभी जगहों पे ऑपरेशन स्मूथली शुरू है।
इस बीच माइक्रोसॉफ्ट में सॉफ्टवेयर में कल हुई बड़े स्तर पर गड़बड़ी के बाद दुनिया भर में हवाई और स्वास्थ्य सेवाएं धीरे धीरे पटरी पर लौट रही हैं। दुनिया भर में लाखों लोगों पर इसका असर पड़ा है। अमरीकी साइबर सुरक्षा कंपनी क्राउड स्ट्राइक ने सॉफ्टवेयर अपडेट किया था और इसमें खामी आने के बाद माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम प्रभावित हुए थे। इससे दुनिया भर में बैंकिंग सेवा, अस्पतालों और हवाई संचालन पर बुरी तरह असर पड़ा। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला ने कहा कि ग्राहकों को तकनीकी जानकारी मुहैया कराने और ऑनलाइन सुरक्षा के लिए क्राउड स्ट्राइक तथा उद्योग जगत संपर्क में है। इस बीच अमरीकी साइबर सुरक्षा कंपनी क्राउड स्ट्राइक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि गड़बड़ी को दूर कर लिया गया है और सभी सिस्टम को सुचारू रूप से काम करने में थोड़ा समय लगेगा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार माइक्रोसॉफ्ट और उसके सहयोगियों के संपर्क में है। सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों को सुचारू संचालन के लिए सभी विपक्ष दलों से सहयोग का अनुरोध करेगी। बजट सत्र सोमवार से शुरू होकर अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। एक रिपोर्ट।
संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। इस बजट सत्र में सरकार 6 नए विधेयक पेश कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन मंगलवार 23 जुलाई को लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट होगा। पिछले महीने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि इस बार का बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के दृष्टिकोण का प्रभावी दस्तावेज होगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत रेहड़ी पटरी वालों को लगभग 8600 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। श्री नड्डा ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के रेहड़ी पटरी वालों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम में ये बात कही। श्री नड्डा ने इस अवसर पर रेहड़ी पटरी वालों के लिए खाद्य सुरक्षा पोर्टल और दिशा निर्देश जारी किए। श्री नड्डा ने प्राधिकरण को रेहड़ी पटरी वालों के लिए 100 रूपये का पंजीकरण शुल्क माफ करने का निर्देश दिया। इससे इन विक्रेताओं को प्रोत्साहन मिलेगा और पंजीकरण में वृद्धि होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा, आज 1000 से अधिक विक्रेताओं को महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा ज्ञान से सशक्त बनाया गया है।
आप सबको सर्टिफिकेट मिलेगा और वह सर्टिफिकेशन आपके दुकान के लिए एक असरदार प्रमाण पत्र भी बनता है। उसके साथ सबको हम एक एक टेस्टिंग किट भी देंगे। तो इस तरीके से सशक्तिकरण करने का कार्यक्रम चलाया गया है। 2,16,000 से ज्यादा लोगों को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं।
श्री नड्डा ने कहा कि प्राधिकरण अगले एक वर्ष में 1,00,000 रेडी पटरी वालों को प्रशिक्षित करेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सशक्त बनाना है। उन्होंने रेडी पटरी वालों को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उठाने के लिए भी प्रोत्साहित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इस अवसर पर कहा कि सरकार देशभर में खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी कमलावर्धन राव, कार्यकारी निदेशक यूएस ध्यानी और वरिष्ठ अधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित थे। दिल्ली सरकार ने गांवों के विकास के लिए बजट में 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसके तहत गांवों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ उन्हें विकसित किया जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण और विकास मंत्री गोपाल राय ने बताया कि 13 करोड़ रुपए से नांगलोई जाट के गांवों में विकास कार्य किया जा रहा है। इन कार्यों के तहत सड़क, नाली, जल निकाय, सामुदायिक केंद्र, पार्क और खेल मैदान जैसे विकास कार्य के लिए किए जा रहे हैं। श्री राय ने बताया कि दिल्ली में रहित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण अभियान के तहत लोगों के निशुल्क पौधे वितरित किए जा रहे हैं और इस वर्ष अभी तक 7.5 लाख से अधिक पौधे वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत इस वर्ष 64 लाख से ज्यादा पौधे वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने आज RRTS परियोजना का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने साहिबाबाद स्टेशन से दुहाई डिपो तक नमो भारत रेल में यात्रा की। राज्यमंत्री ने साहिबाबाद RRTS स्टेशन पर कार्यरत महिला स्टेशन कंट्रोलर और अन्य कर्मचारियों के कार्यों को भी समझा। अधिकारियों ने राज्यमंत्री को बताया कि नमो भारत ट्रेन की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है और 17 लाख से अधिक लोग अभी तक इसकी यात्रा कर चुके हैं। इससे पहले श्री साहू नई दिल्ली स्थित NCRTC के मुख्यालय में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के कार्यान्वयन की अब तक की कार्य प्रगति और परियोजना से अवगत हुए। इस दौरान NCRTC के अधिकारियों ने बताया कि परियोजना का क्रियान्वयन सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए तय समय सीमा के भीतर किया जा रहा है। दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आज श्रीनिवासपुरी में होम्योपैथिक डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि होम्योपैथी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, जिससे होम्योपैथी दवाइयों की मांग अधिक हो गई है। श्री बिधूड़ी ने कहा कि वह क्षेत्र के कार्यों को तेजी और प्राथमिकता के साथ पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली के डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल RML और अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा राजधानी के धोबी घाट क्षेत्र आज एक स्वास्थ्य शिविर आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को स्वास्थ्य जांच, विशेषज्ञ परामर्श, प्रयोगशाला सेवाएं और मुफ्त दवाएं प्रदान की गईं। इस स्वास्थ्य शिविर में 200 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। RML अस्पताल के निदेशक और चिकित्सा अधीक्षक डॉ अजय शुक्ला ने बताया कि निवारक स्वास्थ्य जांच में एनीमिया, अल्प पोषण, मोटापा, रक्तचाप, मधुमेह और अन्य सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं की जांच शामिल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 7 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व विरासत समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी कल गणमान्य अतिथियों को भी संबोधित करेंगे। भारत पहली बार विश्व विरासत समिति की बैठक की मेजबानी कर रहा है। ये बैठक इस महीने की 31 तारीख तक चलेगी। विश्व विरासत समिति वर्ष में एक बार बैठक करती है। यह समिति विश्व विरासत से संबंधित सभी मामलों का प्रबंधन करती है। यह समिति विश्व विरासत सूची में शामिल किए जाने वाले स्थलों पर निर्णय लेती है। इस बैठक के दौरान विश्व विरासत सूची पर नए स्थलों के नामांकन के प्रस्ताव, मौजूदा 124 विश्व विरासत समुदाय की संरक्षण रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय सहायता तथा विश्व विरासत कोष उपयोग कर लेकर चर्चा होगी। इस बैठक में 150 से अधिक देशों के 1,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे। भारत की संस्कृति का प्रदर्शन करने के लिए भारत मंडपम में कई प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिश्वतखोरी के दो अलग अलग मामले में दिल्ली पुलिस के तीन जवानों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इनमें से एक सब इंस्पेक्टर और दो हेड कांस्टेबल शामिल हैं। सीबीआई ने बताया है कि थाना हौज खास में तैनात सब इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत मिली थी कि न्यायालय में अनुकूल कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के लिए उनसे शिकायतकर्ता से 3 लाख रूपये की मांग की थी और 2.5 लाख रूपये की रिश्वत लेने पर सहमति बनी। वहीं दूसरे मामले में थाना पटपटगंज औद्योगिक क्षेत्र में तैनात दो हेड कांस्टेबलों के विरूद्व शिकायत मिली थी कि एक मामले में शिकायतकर्ता ने न फंसने के लिए उन्हें 50,000 रूपये की मांग की थी और बातचीत के बाद शिकायतकर्ता से आंशिक भुगतान के तौर पर 10,000 रूपये की रिश्वत ली। सीबीआई की टीम ने दोनों ही मामलों में आरोपियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ सीबीआई जांच जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का शहरवार और केंद्रवार परिणाम अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। एनटीए ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद परिणाम वेबसाइट पर डाले हैं। इससे पहले न्यायालय ने एनटीए को उम्मीदवारों की पहचान की मास्किंग कर आज दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया था। परिणाम वेबसाइट neet.ntaonline.in पर उपलब्ध है। हरियाणा में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने यमुनानगर इलाके में अवैध खनन मामले में सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने उन्हें जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश किया। ईडी ने पवार के लिए अदालत से 14 दिन की रिमांड मांगी थी लेकिन अदालत ने 9 दिन की रिमांड दी। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की पुण्यतिथि पर आज कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि दी गई। इस श्रद्धांजलि सभा में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के अंतर्गत जनकपुरी पश्चिम स्टेशन से आरके आश्रम कॉरिडोर के बीच निर्माण कार्य के कारण मेट्रो की येलो लाइन पर अंतिम ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि येलो लाइन पर समयपुर बादली से मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम के लिए अंतिम रेल अपने निर्धारित समय रात 11 बजे से 15 मिनट पहले 10:45 पर चलेगी। वहीं मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम से समयपुर बादली के लिए अंतिम रेल अपने निर्धारित समय रात 11 बजे से 1.5 घंटा पहले 9:30 बजे रवाना होगी। डीएमआरसी ने यह भी बताया है कि कल रविवार को समयपुर बादली से मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम के लिए पहली रेल सुबह 6 बजे की बजाय 7 बजे उपलब्ध होगी। इसके अलावा समयपुर बादली और जहांगीरपुरी रेलवे स्टेशन के बीच आज रात 11 बजे से कल सुबह रात 7 बजे तक मेट्रो सेवा उपलब्ध नहीं होगी। राजधानी में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर बादल छाये रहने और कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कमला पुजारी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने कृषि में विशेष रूप से जैविक कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने और स्वदेशी बीजों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने गांवों के विकास के लिए बजट में 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 7 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वीं सत्र का उद्घाटन करेंगे। केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना शुरू होने के बाद से इसके तहत रेहड़ी पटरी वालों को लगभग 8,600 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। और हरियाणा में प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन मामले में सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।